बाप रे, यह बात नहीं थी। यह वाक्य उसके दर्द भरे हृदय से उसकी जिह्वा तक आकर रुक गया। रुलाई के बीच दो तीन अस्पष्ट शब्द उसके मुंह से निकले। उसे मल्ला के लिए जो प्रेम था, उसके कारण वह नहीं आई थी। किसी की परवाह न करके यही उसको कहना था। पलनी के घर में बैठकर वह परिश्रम करके जो कमा लाता है, उसे खाकर ऐसा कहना उचित होता? बेचारा समुद्र में गया हुआ था। वास्तव में वह अपने ही बचाव के लिए चली आई थी। वह माँ बाप को प्यार करती थी या पति के प्रति कर्तव्य बोध से चली आई, यह भी वह नहीं कह सकती थी। पंचमी के कहे मुताबिक वह मल्ला के पीछे नहीं आई थी। बातें सुनाते समय पंचमी ने चैम्पन के पागल हो जाने की बात भी कही। उसने बड़े गुस्से से कहा, उस मुटकी ने यह भी कहा कि तुम एक मुसलमान के साथ घूमती फिरती थी और तुमने तट का सर्वनाश कर दिया। बड़े दुख से उसने आगे कहा, बेचारा बप्पा पागल हो गया। करुतम्मा बिना कुछ कहे बैठी रही। उसके कान भारी हो गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पंचमी ने और भी सुनाया। वह बात इस समय भी तट पर दोहराई जाती है। आज भी लोग उसका जिक्र करते हैं। उसका अभिमानी बप्पा भी बात जान गया। बप्पा उसे क्षमा करेगा? पंचमी फिर परी की बात पर आ गई। उसकी दारुण स्थिति का वर्णन किया। उसने कहा, उसके पास कुछ भी नहीं है दीदिया। समुद्र तट पर भूखा घूमता रहता है। देखने में पागल जैसा लगता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। गौतम्मा ने यह सब सुनाने के लिए नहीं कहा था, न मना ही किया था। सुनने की इच्छा तो उसमें थी ही। दूसरी स्थिति में रहती तो वह परी के बारे में जरूर प्रश्न करती। उसे उस तट पर पीला कुर्ता और टोपी आदि पहनकर रेशमी रुमाल लटकाए अपने बाप के साथ आए हुए बच्चे की स्मृति जागृत हो आई होगी। उसने उसको वह शंख जो दिया था। इस तरह उसके प्रेम नाटक के सब दृश्य उसकी आंखों के सामने से गुजरे होंगे। एक मूल्यवान जीवन बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया नहीं, बर्बाद कर दिया गया। अपने को भूलकर उसने पंचमी से पूछा, छोटे मोतलाली अभी नाव पर बैठकर गाया करते हैं क्या? पंचमी ने उत्तर दिया, हाँ कभी कभी गाता है। उस गाने का अर्थ पंचमी को मालूम था। नहीं, कहुतम्मा ने पूछा, तुमसे मिलता था? कभी कभी उसे देखती थी। तब दीदी की बात तुझसे पूछता था? करतम्मा की आवाज कांप रही थी। पंचमी ने कहा, मुझे देखता तो मुस्कुरा देता था। नहीं, पूछता था। एक अस्पष्ट ध्वनि में यह वाक्य सुनाई पड़ा और उसके साथ ही दोनों के सामने पलनी आकर खड़ा हो गया। करुतम्मा और पंचमी दोनों खड़ी हो गईं। करुतम्मा का रहस्य पकड़ा गया। भाग 20। करुतम्मा में अब एक मजबूती आ गई जिसका अब तक उसमें अभाव था। उसमें एक विशेष युक्तिबोध आ गया और उसके सामने जीवन की एक स्पष्ट योजना भी बन गई। उसके जीवन की धारा और घटनाओं ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया था। आज तक वह डरते डरते जी रही थी, सबसे डरती थी और उसे सब तरह का डर बना रहता था। उसमें अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। शायद वह किसी भी तरह जीना चाहती थी, इसीलिए ऐसा होता था। लेकिन अचानक एक परिवर्तन हो गया। पंचमी का आ जाना इसका एक कारण हो सकता है। जब उसका रहस्य प्रकट हो गया, उस समय पंचमी के रूप में उसे एक साथी मिल गया। अब छिपाने के लिए क्या था, डरने के लिए क्या था? जीवन की सुरक्षा का बोझ, अपने को सुरक्षित बनाए रखने का विचार, दोनों एक साथ समाप्त हो गए। सुरक्षित मार्ग पर उसके साथ जाने के लिए अब पंचमी उसके पास थी। उस दिन भी उसने पति से अपनी पुरानी प्रतिज्ञा दोहराई। उसने अपनी सारी बातें खोलकर उसे बता दी। पलई ने परी के बारे में यह पूछा कि बचपन का साथी होने के अलावा उसका उससे क्या संबंध रहा। जवाब में कवतम्मा ने कहा कि वह पतित नहीं हुई है। पलई ने पूछा, तुम उससे प्रेम करती थी? करुतम्मा ने जीवन में सब कुछ खोकर समुद्र तट पर पागल की तरह गाना गाते हुए घूमने वाले परी को अपने मन की आंखों के सामने देखा। पंचमी ने थोड़ी देर पहले उसकी जो करुण कहानी सुनाई थी, उस कहानी ने उसकी एक मूर्ति उसके सामने खड़ी कर दी थी। उसके ये शब्द, मैं रोज यह गाना गाऊंगा, त्रिकुण पुषा तट पर सुनाने के लिए यह गाता रहूंगा। नाव और जाल जब हो जाएंगे तब मछली मेरे हाथ बेचोगी, करुतम्मा के कानों में गूंज रहे थे। जवाब देने में क्षण भर की देर हुई तो पलई ने अपना सवाल दोहराया। करुतम्मा को लगा कि उसके भीतर से कोई डांट कर पूछ रहा है कि अब क्या छिपाना है। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, शादी के पहले तुमने किसी से प्रेम किया, इसमें क्या गलती थी? करुतम्मा ने जवाब दिया, हाँ करती थी। सारी कोठरी में एक गहरी निस्तब्धता छा गई, उसे कौन भंग करता? आखिर पलनी ने पूछा, क्या आते समय तुम उससे विदा लेकर आई थी? करुतम्मा ने हाँ या ना कुछ नहीं किया। पलनी ने एक और सवाल पूछा, फिर कब मिलने की बात कही है? ऐसी कोई बात नहीं कही। बच्ची जाग कर रोने लगी, करुतम्मा ने उसे उठाकर दूध पिलाया। उस दिन करुतम्मा ने पलनी का हृदय जीतने की कोशिश नहीं की, लेकिन बार बार अपनी प्रतिज्ञा दोहराती रही। विवाहित होने के नाते जो मूक प्रतिज्ञाएं की जाती हैं उन्हें ही उसने दोहराया, इसके सिवा और क्या कर सकती है, ऐसा प्रश्न उसके मन में उठता था। खूब भोर में ही पलनी उठकर बिना कुछ कहे ही कहीं चला गया। पंचमी ने पूछा, क्या जीजा रूठ गया है? करुतम्मा ने जवाब दिया, अब दुनिया में हम दोनों का कोई नहीं है। पंचमी ने कहा, दीदिया तुम्हारा तो घर है, मेरा ही दुनिया में कोई नहीं है। नहीं नन्ही, हम दोनों की एक स्थिति है, हम साथ साथ ही अपना गुजारा करेंगी। थोड़ी देर के बाद करुतम्मा ने आगे कहा, हम दोनों बुद्धिमान चेम्पन की संतान हैं। उस दिन दोपहर को जब पलनी आया तब करुतम्मा ने कहा, मुझे जरा निरकुन्नम जाना है। पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया। करुतम्मा ने चेम्पन की उस स्थिति के बारे में सुनाया। उसके बाद उसने कहा, बप्पा का अब कोई नहीं रहा। इस पर पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन भी रोज की तरह पलनी ने कांटों में चारा लगाकर उन्हें ठीक किया। करुतम्मा ने एक बर्तन में रात का खाना रख कर निकाला। पलनी कांटा और डांड लेकर आगे आगे और करुतम्मा एक हाथ में उसका खाना और दूसरे हाथ में बच्ची को लेकर पीछे पीछे इस तरह दोनों समुद्र तट पर गए। उस दिन भी बच्ची ने हाथ उठाकर विदा दी। पलनी ने तरंगों को पार करके आगे जाने के बाद मुड़कर देखा, बच्ची हाथ उठाए हुए थी। करुतम्मा तट पर थोड़ी देर खड़ी रही। शाम हो चली थी। पश्चिम दिशा में आकाश तपाए गए सोने के समान लाल दिखाई दे रहा था। कैसा गहरा रंग था, समुद्र का नीला जल और आकाश की स्वर्णिम आभा, दोनों के बीच एक काली रेखा खींची जैसी मालूम हो रही थी। उस रेखा के उस पार क्या है, यह एक रहस्य है, एक बड़ा भारी रहस्य। पलनी की नाव उस अनंत जलराशि में दक्षिण की ओर बढ़ी। वह खड़ा होकर डांड चला रहा था तेजी के साथ। जब वह नाव से पानी मार मार कर फेंक देता था तब फिर थोड़ा पानी आ जाता था। नाव में इस तरह खड़े होकर नाव चलाते कितने दिन हो गए, ऐसा लगता था कि मानो उसकी सोई हुई शक्तियां जाग उठी हैं। उसका शरीर उन शक्तियों को संभाल नहीं सकता। उसके हाथ में जो डांड है वह काफ़ी नहीं है और नाव बहुत छोटी हो गई है। वह नाव में पानी के भरने की ओर ध्यान न देकर उस काली रेखा को लक्ष्य करके नाव खेने लगा। उस जागृत शक्ति की हुंकार और गर्जना वहाँ की विशालता में किसी ने नहीं सुनी। लगता था कि पलनी की नाव आकाश में उड़ी जा रही है। किसी ने उस शक्ति को जगाया होगा, उसे अब शांत करने की शक्ति किसमें है मालूम नहीं होता। लगता था कि असीम शक्ति अनियंत्रित छोड़ दी गई है। पलनी चला जा रहा था। समुद्री हाथियों का एक झुंड उस नाव के चारों ओर गोता लगाते हुए निकल गया। उनमें से एक ने नाव को अपनी पीठ पर थोड़ा उठा लिया। नाव पानी के ऊपर उठ गई। संभव था कि वह दूसरे ही क्षण उलट जाती। लगता था कि पलनी की आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं। दांतों से होठ काटते हुए वह जोर से चिंघाड़ा। उसने उठी हुई नाव में से एक डांट चलाया। एक ही क्षण में यह सब हो गया, नाव उल्टी नहीं। समुद्री हाथी शायद रीढ़ टूट जाने से पानी में डूब गया। पलनी डांट चलाता रहा। वह दूर पश्चिम की ओर कहाँ जा रहा था? इस पश्चिम की कोई सीमा नहीं है। समुद्र के किनारे बच्ची बिना कारण ही रो पड़ी। शायद निष्कलंक बच्ची ने अपने बाप को पागल की तरह आवेश में जाते देखा होगा। बेचारी पिता को अनंत की ओर जाते देखकर रोई होगी। पलई ने बच्ची की रुलाई नहीं सुनी। हवा की गति पूरब की ओर थी। समुद्री हाथी से लड़ते समय की पलनी की चीख को हवा ने तट पर पहुंचा दिया। गौतम्मा ने उसे सुना? नहीं, उसके कान में वह आवाज़ नहीं जा सकी। इतनी पवित्रता उसमें नहीं थी। पलनी रहस्य की खोज में जा रहा था। समुद्र से ही चंद्रमा का उदय होते उसने देखा है। वह एक नई दुनिया में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर नीले जल में चांदी उड़ेल दी गई हो। ऐसा दृश्य था। पलनी चारों ओर क्षितिज से घिरे एक नए लोक में था। उसे एक डर मालूम हुआ। अब तेजी से नाव चलाकर सीमा पार करनी थी। समुद्री सांप उसकी नाव पर चढ़ गए। चारों ओर की चांदनी की चमक में उसने सांपों को लौटते देखा। कुछ सांप नाव के छोर पर पूंछ टिकाए सिर उठाकर नाचते और फिर नाव में गिर जाते थे। दो सांप नाव में एक दूसरे से लिपट कर खेल रहे थे। दूर पश्चिम से एक उत्तुंग तरंग क्षितिज के दृश्य को ढकती हुई उठी और उमड़ती हुई आती दिखाई पड़ी। पलनी के मन में उस तरंग के नीचे से गोता लगाकर उस पार निकल जाने की इच्छा हुई, लेकिन उस तरंग ने हंसी के बुलबुले फैलाते हुए नाव को ऊपर उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। उस पार समुद्र शांत था, लेकिन एक काला रंग फैला हुआ था। दक्षिण पश्चिम कोने से एक लंबा प्राणी समुद्र की तह से निकलकर बढ़ता जैसा मालूम हुआ। वहाँ की शांति में एक विशेषता थी। नाव को इच्छानुसार नहीं ले जाया जा सकता था। वहाँ एक अंतर्वाहिनी धारा का खिंचाव था। लगता था कि उधर कहीं एक भंवर है। उसकी वजह से समुद्र की तह का कीचड़ भी खींच रहा था। पलई ने उस खिंचाव का सामना करना चाहा। कहीं उसकी नाव ही खींच जाए तो? पलई ने खिंचाव के विरुद्ध खेना शुरू किया। दूर से एक प्रकाश फैलता नजर आया। उसी ओर न मालूम क्यों पलई ने अपनी नाव चला दी। पानी में छोटी छोटी लहरों के बीच समुद्री बगुलों का एक झुंड डोलता हुआ नींद ले रहा था। एकाएक सब बगुले प्राण भय से चीखते हुए ऊपर की ओर उड़ गए। वे नाव देखकर नहीं डरे थे। समुद्र में एक चीख की आवाज़ उठी। एक शार्क ने एक बगुले को पकड़ लिया था। पलई ने कांटा डाला। एक कुशल मल्लाह होशियारी से यही काम करता है। बहुत देर तक करुतम्मा और पंचमी बातें करती रहीं। माँ और परी आदि के बारे में तो बातें खत्म हो चुकी थीं। चैम्पन एक समस्या हो गया था। चैम्पन की अभागी लड़कियाँ भी समस्या बन गईं। बातें करते करते पंचमी सो गई। करुतम्मा को नींद नहीं आई। उस दिन अजीब ढंग से एक ही गत से हवा बहती रही। करुतम्मा को लगा कि उस हवा में पहले कभी न सुना गया एक दीन स्वर है। उसके कान खड़े हो गए। उसने बार बार उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश की। इस तरह वह अपने जीवन के परी की ओर बह गई। उसका मल्ला अकेला समुद्र में गया था। वह दूर समुद्र में कांटा डाल रहा था। उस समय करुतम्मा को प्रथम मल्लाहिन की तरह तट पर खड़ी होकर एकाग्रचित से तपस्या करनी चाहिए थी, पर वह पड़ी पड़ी परी के बारे में सोच रही थी, लेकिन पूर्ण चेतना के साथ नहीं। वह जगी नहीं थी, सोई भी नहीं थी। परी बेचारा अच्छा आदमी था, गौतम्मा भी उसे प्यार करती थी। यह सब बातें स्पष्ट हो गई। गौतम्मा जीवन भर परी को नहीं भुला सकती थी। परी उसका था और वह परी की थी। अंदर से कोई विरोध नहीं था, वहां कोई पीड़ा नहीं थी। उस अर्ध चेतनावस्था में गौतम्मा धीरे धीरे कुछ बोलती जाती थी। उसे लगा कि वह प्रतीक्षा में जाग गई है, कि परी फिर आएगा और बुलाएगा। उसे जवाब देना है, उसी के लिए वह जग पड़ी है। करुतम्मा, करुतम्मा को फिर दूर से उसका नाम पुकारने की आवाज़ जैसी लगी। वह सोचने लगी कि उसकी अर्ध सुषुप्तावस्था का भ्रम था या सचमुच दरवाजे पर कोई बुला रहा था। फिर पुकारने की आवाज़ आई, करुतम्मा। एक ही आदमी इस तरह रात के समय आकर दरवाज़ा खटखटा कर उसे बुलाता है। वह तो रोज पुकारा करता है, पलनी ही समुद्र से आकर उसे पुकारता है। समय करीब करीब उसके लौटने का हो गया था। करुतम्मा, फिर आवाज आई और करुतम्मा को संदेह हुआ कि यह पलनी की आवाज है क्या। उसने जवाब दिया, हाँ। दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहा गया, यद्यपि पलनी कहा करता था। फिर भी करुतम्मा दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। खूब जोर से हवा चल रही थी। उस हवा में एक तरह की तीक्ष्णता थी। स्वच्छ चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। बाहर उसने किसी को भी नहीं देखा। वह घर के पश्चिम में समुद्र की तरफ देखने गई। वहाँ उस चांदनी में एक आदमी खड़ा था। वह परी था। करुतम्मा डरी नहीं, चिल्लाई नहीं। ऐसा लगा मानो उसकी पुकार सुनकर वह दरवाज़ा खोल कर आई है। परी धीरे धीरे उसके पास आ गया। करुतम्मा ने परी की ओर ध्यान से देखा। वह उसके पहले के परी जैसा नहीं था, बहुत दुबला हो गया था। परी पास में आया। करुतम्मा को डर नहीं लगा। नहीं, अब उसे किसी प्रकार का डर नहीं था। उसे एक माँ का गौरव प्राप्त हो गया था। फिर भी जब पलनी समुद्र में गया है, तब रात्रि के समय किसी पर पुरुष के साथ उसे बातें करते रहना चाहिए क्या? लेकिन उसे किसी बात का डर नहीं था। इसके पहले भी वह रात में परी से अकेली मिल चुकी है ना? इससे भी बढ़कर जिसका जीवन निराशा में बर्बाद हो गया है, उसे क्षण भर के मिलन से थोड़ी सांत्वना दे सके तो देनी चाहिए ना? थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कौतम्मा को लगा कि सामने जो परी खड़ा है, उसके सर्वनाश का कारण वही है। परी हमेशा से प्रेम करता रहा है, यह कौतम्मा को मालूम है। कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहे और कभी भी हो, वह उसे प्रेम करता रहेगा, हमेशा उसे माफ करता रहेगा। वह उसके प्रति कुछ भी करे, परी सब सहता रहेगा। कुछ ही क्षण में करुतम्मा अपने जीवन की सब विफलताएं भूल गईं। उसकी हार नहीं हुई। उसके पास एक बड़ा धन है। वह धन है जो दूसरों के पास नहीं है। वह एक बलिष्ठ आदमी के संरक्षण में है। उसका जीवन उसके पास सुरक्षित है। जीवन संबंधी उसकी चेतना बिल्कुल दुरुस्त है। उसे कभी भूखी नहीं रहना पड़ेगा। बाहर से किसी प्रकार का आघात उसे नहीं हो सकता। उसके पलने में इतनी ताकत है, उसे इसका विश्वास था। इसी प्रकार उसकी आत्मा में भी एक विश्वास उत्पन्न हुआ। एक आदमी उससे प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा, और वह आदमी उसके सामने खड़ा था। परी के बढ़ाए हुए हाथों के बीच से वह उसकी छाती से जा लगी। दोनों के अधर मिल गए। परी ने उसके कान में कहा, मेरी करुतम्मा हूँ। परी करुतम्मा की पीठ पर हाथ फेरने लगा। परी ने फिर पुकारा, करुतम्मा हूँ। अर्धचेतना अवस्था में करुतम्मा ने फिर जवाब दिया, मैं तेरा कौन हूँ। परी के कपोलों को अपने दोनों हाथों से पकड़ती हुई और अर्धनिमीलित नेत्रों से उसे देखती हुई करुतम्मा ने कहा, कौन। मेरे रत्न भंडार। दोनों फिर एक हो गए। उस आनंदानुभूति में वह परी के कान में कुछ कुछ कहती रही। उस गाढ़ आलिंगन से अलग होने की शक्ति उसमें नहीं थी। बहुत दूर समुद्र में एक सार्क ने चारे वाले कांटे को मुंह से पकड़ लिया। अब तक पलनिया किसी दूसरे के कांटे में इतना बड़ा शार्क नहीं फंसा था। चारा पकड़ते ही शार्क ने अपनी पूंछ से नाव को जोर से मारा। उस जगह समुद्र के पानी में हलचल मच गई। उस मार के जोर से बहुत ऊपर तक पानी के छींटे उठे। पूंछ से मारने के बाद शार्क आगे कूदा। पलई ने उसे देखा। उसके मुंह से कांटे की रस्सी लगी दिख रही थी। उस तट पर इतना बड़ा मच्छ पहले पहल उसी ने पकड़ा था। पलनी खुशी के मारे चिल्ला उठा। तुरंत उसे एक बात तय करनी थी, रस्सी खींचकर शार्क को रोके या उसे इच्छा अनुसार भागने दे। कांटा यदि ठीक उसके कंठ में अटक गया होगा तब तो रस्सी को जरा सा खींच देने से ही वह रुक जाएगा, लेकिन यह भी संभव था कि वह उसी क्षण नाव को मारकर तोड़ दे। अगर उसे आगे अपने गद से जाने दे तो नाव को भी खींच ले जाएगा। उस तरह वह उसे कहाँ और कितनी दूर खींच ले जाएगा, तट का पता नहीं था। एक हाथ से कांटे की रस्सी पकड़े और दूसरे हाथ से डांड संभालते हुए पलई ने दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकाश की ओर देखा, लेकिन वह जिस नक्षत्र को देखना चाहता था वह दिखाई नहीं पड़ा। आकाश बादलों से आच्छादित हो गया था। अचिंत्य द्रुत गत से पानी को चीरती हुई उसकी नाव चली जा रही थी। समुद्र शांत था, लेकिन उसका रंग भयानक रूप से काला हो गया। पानी का बहाव किस ओर है यह जानने के लिए पलई ने पानी की ओर देखा। ध्यान से देखने पर भी कुछ पता नहीं चला। शार्क नाव को खींचता हुआ चला जा रहा था। वह कहाँ की यात्रा थी, कितनी दूर खींच ले जाएगा। दांत पीसता हुआ पलनी चिल्ला उठा, अरे ठहर, मुझे समुद्र माता के महल में खींच ले जाने का समय अभी नहीं आया है। पलनी ने रस्सी को जरा खींच दिया, नाव एकाएक रुक गई। पलनी ठठा कर हंसा, हा 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 हा, ठहर जा रे, वहीं ठहर जा। थोड़ी दूर पर असह्य प्राण वेदना से शार्क पूंछ पटक पटक कर छटपटा रहा था। पलई ने खुशी खुशी रस्सी को और जोर से खींचा। वह समुद्री मच्छ ऊपर की ओर उछला और नीचे गिर गया। नाव निश्चल थी, लेकिन वह चक्कर काटती सी मालूम होने लगी। वह एक बहाव में पड़कर गोलाई में चक्कर काट रही थी। पलई ने ध्यान से देखा। उसे डर लगा कि वह एक बड़ी भंवर में फंस गया है। फिर एक बड़ी गोलाई का बहाव नजर आया। उस समय भी वह कांटे की रस्सी को कसकर पकड़े हुए था। पलई ने आसमान की ओर देखा, एक भी तारा नहीं दिखाई पड़ा। चारों ओर बादल छाए हुए थे। बादलों के छा जाने से सब तारे अदृश्य हो गए थे। नाव पर से पलई ने चारों तरफ देखा। एक क्षण पहले तक चारों ओर जल राशि शांत दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब वो अदृश्य बदल गया। उसे लगा कि वह चारों ओर से एक पहाड़ से गिर गया है और वह एक अघात गढ़े में है। बीच समुद्र की तह में ही समुद्र माता का महल है, जहाँ देवी समुद्र माता निवास करती हैं। पलनी उस महल का वर्णन कई बार सुन चुका था। वहाँ पहुँचने का रास्ता एक बड़ी भंवर से है, एक ऐसी भंवर जिसके चक्कर में सारा समुद्र सिमट जाता है। पलनी को लगा कि चारों ओर पहाड़ की ऊंचाई बढ़ रही है। उसने रस्सी थोड़ी ढीली कर दी, नाव फिर द्रुत गति से बाहर भागने लगी। पलनी उस भंवर से बाहर निकला, उस पहाड़ को पार किया, कहीं से एक भयानक आवाज सुनाई पड़ी। इतनी भयंकर आवाज पलनी ने पहले नहीं सुनी थी। वह एक तूफान की आवाज थी। पहाड़ जैसी उतुंग तरंगे उठी, वैसी तरंगे भी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तरंगे लंबी लंबी लपेटों में आगे नहीं बढ़ी, वरन उसके चारों ओर मिलकर एक वृत्ताकार में बढ़ी। पलनी ने एक क्षण के लिए समुद्र की इस क्षुब्ध स्थिति पर विचार किया। उसे तरंगों के ऊपर से नाव चलाना आता था, आंधी और तूफान से भी उसने लड़ना सीखा था, घनघोर अंधकार में भी उसने नाव चलाई थी। जोर से बिजली चमकी, मेघ का भयानक गर्जन हुआ। पलनी ने रस्सी को पूरी तरह ढीला कर दिया। रस्सी कसने से नाव के रुक जाने और शार्क की मार से टूट जाने की संभावना थी, इसीलिए शार्क को अपनी इच्छा अनुसार जाने देने का ही उसने निश्चय किया। ऊंची तरंगों पर जब नाव चढ़ती थी तब नाव का भार कम करने के लिए वह डाँड पकड़े ऊपर उछल जाता था और तरंगों की चोटी पर आते आते वह नाव में गिर जाता था। चोटी पर से उतरते ही दूसरी तरंगे उसे नाव सहित निकल जाने की तैयारी में मुँह खोले खड़ी मिलती। समुद्र उस बेचारे मल्लाह पर मानो क्रुद्ध होकर गरज रहा था। उस गर्जन से आंधी अपनी श्रुति मिला रही थी और मेघ ताल दे रहे थे। कैसा पैसाचिक तांडव हो रहा था। वह एक छोटा सा निस्सार मानव प्राणी था। उसका सर्वनाश करने के लिए समुद्र माता को इतनी भयंकर शक्तियों को लगा देना चाहिए। वह चाहती तो कितनी जल्दी उसे अपने उदर के अंदर खींच ले जा सकती थी। शायद यह तरंगे समुद्र तट पर भी चढ़ गई होंगी, वहाँ की झोपड़ियों के ऊपर भी बही होंगी, जमीन पर इस समय जहरीली सांप भी लौटते होंगे। दूर पर कोई चीज ऊंचाई पर दिख रही है। क्या कोई असाधारण तरंग उठी है जिसका शिखर दिखाई पड़ रहा है, या कोई भयानक जल जंतु सिर उठाकर अपना गुफानुमा मुंह खोले खड़ा है? क्या पलनी की अजेय शक्ति समाप्त हो गई? एक तरंग के आते ही उसने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उठा नहीं। वह मुंह खोले बढ़ने वाली तरंग उसके ओ और उसकी नाव के ऊपर से उन्हें लपेटती हुई निकल गई। जोर से बिजली कड़की, भयानक मेघ गर्जन हुआ। ऐसा लगा मानो आसमान की टूट पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि समुद्र का सारा पानी सिमट कर एक ही जगह जमा हो रहा है। आंधी और तूफान का ऐसा रंग ढंग था कि मानो सर्वनाश करके ही दम लेगा। बिजली की चमक में एक तरंग के ऊपर पलनी की नाव का छोर दिखाई पड़ा। उस तरंग के नीचे आ जाने पर नाव से चिपटा पलनी भी दिखाई पड़ा। वह नाव को मजबूती से पकड़े हुए था। एक क्षण के लिए सांस रोकते हुए वह चिल्लाया, करुतम्मा! पलनी की पुकार उस तूफान के गर्जन से भी बढ़कर ऊंची आवाज में सुनाई पड़ी। उसने करुतम्मा को क्यों पुकारा? उसमें कोई उद्देश्य था न? समुद्र में जाने वाले मल्लाह की रक्षा करने वाली देवी घर में बैठी मल्लाहिन ही है ना? उसने करुतम्मा से उस आदि मल्लाहिन की तरह तपस्या करने की मांग की। वह प्रथम मल्लाह आधी पानी में फंस जाने पर भी अपनी मल्लाहिन की तपस्या के फलस्वरूप बचकर घर लौट सका था ना? पलनी को भी उसी प्रकार रक्षा पाने का विश्वास था। उसकी भी मल्लाहिन थी, उसने पिछले दिन भी तो प्रतिज्ञा की थी, वह जरूर तपस्या करती होगी। आंधी ने जोर पकड़ा, पलनी अपनी शक्ति भर आंधी से लड़ा, आंधी तरंगों से मिल गई, एक उतुंग तरंग की लपेट आगे बढ़ी। पलनी के मुंह से फिर एक करु शब्द निकला, तब तक वह तरंग उसके ऊपर से निकल गई। अब कुछ नहीं दिख रहा है, आंधी तूफान बिजली मेघ गर्जन सब मिल गए, सब शक्तियों के योग से संहार का काम पूरा हो रहा है। पानी आसमान तक उठा, सारा समुद्र एक गुफा जैसा हो गया, तूफान भी नजर आने वाली चीज बन गई। बहुत दूर पर एक तरंग की चोटी पर वह नाव उल्टी हुई दिखाई पड़ी। उसे पकड़े पेट के बल पड़ा हुआ पलनी भी दिख पड़ा। इस समय भी वह नाव को पकड़े हुए था, लेकिन क्या उसका सिर फिर उठेगा? क्या इस दारुण संहार का काम समाप्त हो गया? एक भंवर में पड़कर वह नाव खड़ी खड़ी नीचे की ओर खींच गई। एक नक्षत्र चमक उठा, वह था मछुआरों को दिशा का ज्ञान कराने वाला नक्षत्र, मछुआरों का अरुंधति। किंतु उसका तेज मंद पड़ गया सा लगता था। दूसरे दिन सुबह समुद्र का दृश्य बिल्कुल शांत था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूर समुद्र में अच्छा बटोर हुआ, ऐसा रात को जागने वाले कुछ मछुआरों का कहना था। तरंगें कुछ घरों के आंगन तक चढ़ाई थीं। तट की बालुका राशि पर समुद्री सांप भी देखे गए। पश्चिमी तट पर उस बच्ची को गोद में लिए खड़ी खड़ी रो रही थी, और बच्ची माँ और बाप के लिए चीख पुकार मचाए हुई थी। पंचमी रोते रोते बच्ची को भी चुप करा रही थी। दो दिन के बाद आलिंगनबद्ध एक स्त्री और पुरुष के शरीर वहाँ किनारे लग गए। वे करुतम्मा और परी के शरीर थे। चेरी शिकल तट पर कांटा निकला हुआ एक शार्क भी किनारे लगा था।